इशिका सिंघानिया मेंशन आई हुई थी। उसने बहुत मुश्किल से राधिका को वो तस्वीर दिखाई थी, लेकिन जैसे ही राधिका ने कहा कि तस्वीर में मौजूद औरत देखा जो इशिका जैसी लगती थी, उसे देखते ही उसने कहा वो उसकी माँ नहीं है। ये सुनते ही इशिका का दिल टूट गया था। ऐसा लगा जैसे इशिका की उम्मीदें पल में ही टूटकर बिखर गई हों। गौतम ने भी राधिका को याद दिलाना चाहा, लेकिन राधिका ने सिर हिलाकर कहा, मुझे उनका चेहरा याद नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उन्हें पहचान नहीं सकती, ये मेरी माँ नहीं है। राधिका के कहते ही श्रुति उसके पास आई। उसने तस्वीर को देखा और फिर उसने भी यही कहा, राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है, ये मैडम मर्चेंट नहीं है। याद है ना, उनकी गाल पर एक बड़ा सा तिल था, उनके बाल बिल्कुल सीधे थे जबकि इसके हल्के घुंघराले हैं। श्रुति ने तस्वीर वापस गौतम को पकड़ा दी थी। गौतम ने एक नज़र तस्वीर में मौजूद औरत को देखा और फिर राधिका को। दोनों में बिल्कुल भी समानता नहीं थी। अगर तस्वीर में मौजूद औरत राधिका की माँ होती तो उनका चेहरा थोड़ा बहुत मिलता, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। गौतम हैरान थे। तभी नैना उनके पास आई और धीमी आवाज़ में बोली, आपने पहचान में गलती कर दी होगी, हो सकता है आप इस औरत से मिले होंगे, लेकिन ये आपकी मैडम मर्चेंट नहीं है। इशिका के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर नैना ने उसे प्यार से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, हो सकता है ये तुम्हारी दादी हो, तभी तुम दोनों का चेहरा इतना मिल रहा है। गौतम ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, इशिका आदर्श सिंघानिया की बेटी है और उनकी फैमिली पिक्चर्स बाहर लिविंग रूम में लगी हुई हैं, उनमें से किसी का चेहरा इशिका से नहीं मिल रहा था। इशिका उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, वो बस वहां से चली जाना चाहती थी। तभी राधिका ने आगे बढ़कर गौतम के हाथ से तस्वीर ली और उसको गौर से देखने लगी। राधिका को वो औरत जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें कहाँ देखा था। उसने मन ही मन कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस औरत से मिली हूँ, लेकिन ये इशिका जैसी उसके जैसी कैसे देख सकती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इस औरत को सालों पहले दिल्ली में देखा था और इसका चेहरा इशिका से मिल रहा है। राधिका याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने वो तस्वीर वापस इशिका को पकड़ाना चाही, तभी उसकी नज़र अरमान पर पड़ी। राधिका ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? अरमान ने उसे देखकर सिर झुकाया और काफ़ी नरमी से कहा, मैं दिल्ली की सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम अरमान सिंघानिया है। मेरे छोटे चाचा यानी केशव सिंघानिया आपको जानते हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ आपसे मिलने के लिए भेजा था। जैसे ही अरमान ने अपना परिचय दिया, राधिका के कदम लड़खड़ा गए थे। श्रुति ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला। राधिका की सांसें तेज हो रही थी और आंखें नम होने लगी। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े आदर्श पर पड़ी। आदर्श राधिका की हालत समझ सकता था, वो जल्दी से आया और उसे संभालने लगा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, राधिका ने अरमान से पूछा। जहाँ तक उसे याद था, उसने सिंघानिया फैमिली को इस गैदरिंग में इनवाइट नहीं किया था। वो एक्चुअली आपने रायचंद फैमिली को इनविटेशन भेजा था और उनका एक लड़का मेरा फ्रेंड है, तो उसके साथ मैं भी आ गया। अंकल से आपके बारे में पता चला, वो भी चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ और आपके हालचाल जानूँ, अरमान ने काफ़ी अदब से जवाब दिया। अरमान राधिका को काफ़ी गौर से देख रहा था। फिलहाल सिंघानिया फैमिली की पूरी बागडोर केशव सिंघानिया के हाथ में थी। उनकी कोई बात अरमान चाहकर भी नहीं टाल सकता था। केशव ने शादी नहीं की थी, वो औरतों से भी दूर रहते थे। ऐसे में उन्होंने राधिका के पास अरमान को भेजा है, उसके लिए थोड़ी हैरानी की बात थी। अरमान उनके रिश्ते के बारे में पता लगाना चाहता था। तभी राधिका ने बेपरवाही से कहा, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, हम बस एक दो पार्टी वगैरह में मिले हैं। राधिका की आंखें नम होने लगी थीं और उसे केशव के नाम के साथ ही पुरानी बातें याद आने लगी थीं, जब एक पार्टी में ड्रिंक करने के बाद दोनों ही अपने होश में नहीं थे। राधिका ने केशव के साथ एक रात बिताई थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर सबसे दूर आदर्श के साथ यहाँ गोवा में आ गई थी। वहाँ उसने आयशा को जन्म दिया। राधिका ने आदर्श की तरफ देखकर कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। हाँ क्यों नहीं, मिस्टर सिंघानिया आयशा और नक्श के साथ डिनर कर लेंगे, आदर्श ने जवाब दिया। अरमान को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आयशा अरमान को लेकर वहां से जाने लगी तो वहीं आदर्श राधिका को लेकर जा रहा था। ऐसे में इशिका का रुकना बेकार था, वैसे भी उन सब की बातों में कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था और जिस तरह से वो फोटो लेकर आई थी उसका मजाक बनकर रह गया था। गौतम भी कुछ नहीं कह पा रहे थे, वो इशिका से माफ़ी तक नहीं मांग पा रहे थे। जब इशिका और अरमान बाहर निकल रहे थे तभी राधिका की नज़र उन पर पड़ी और उसे कुछ याद आ रहा था। राधिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, अरमान ने कहा कि वो केशव सिंघानिया का भतीजा है, वो जो फोटो में औरत है उसे मैंने केशव सिंघानिया के साथ देखा है। हाँ वो केशव की माँ है, लेकिन इशिका की शक्ल उसकी दादी से क्यों मिल रही है? आज ही श्रुति ने राधिका को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाई थी, जिसने ये साबित कर दिया था कि इशिका आदर्श की बेटी नहीं है। लेकिन जब मालविका प्रेग्नेंट थी और सारे टेस्ट करवाए गए थे, तब ये साबित हो गया था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा आदर्श का ही है। अचानक ही राधिका के सामने सब कुछ साफ होने लगा। वो बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, इशिका आदर्श की नहीं बल्कि केशव की बेटी है। शायद तभी उसकी शक्ल अपनी दादी से मिल रही है और आंखें अपने पिता से। इशिका मेरी और केशव की बेटी है। राधिका ने कुछ ही मिनट में सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। उसे सच समझ आ गया था कि इशिका उसकी बेटी है। राधिका ने पीछे से इशिका को आवाज लगाकर कहा, इशिका। इशिका के कदम वहीं रुक गए थे। उसने राधिका की तरफ देखा तो वो कांप रही थी। एक एक करके राधिका के सामने वो पुराने सारे दृश्य घूमने लगे। जब इशिका पैदा हुई थी, तब मालविका जानबूझकर उसे दूध नहीं पिलाती थी, वो बहाने बनाती थी। तब राधिका चुपके से इशिका को दूध पिलाती थी। बड़ी होने पर मालविका ने जब इशिका को खाना नहीं दिया, तो उसने देखा कि इशिका कचरे में पड़े खाने को खा रही है। तब राधिका ने उसके लिए खाना भिजवाना शुरू कर दिया था। आगे भी मालविका इशिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती रही। वो इशिका से इस बात का बदला ले रही थी क्योंकि वो राधिका की बेटी थी। बड़ी हो जाने के बाद जब इशिका ने घर छोड़ दिया, तब राधिका उसके बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन आदर्श और आयशा के डर से वो कुछ नहीं कह पाई। राधिका को हमेशा से ही इशिका से एक अलग ही अटैचमेंट था, जिसे वो सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। मालविका के किए गुनाहों का जिम्मेदार उसने कभी इशिका को नहीं समझा, पर आज उसे समझ आ रहा था कि इशिका से उसे इतना अपनापन क्यों महसूस होता था। राधिका ने धीरे से कहा, इशिका प्लीज मत जाओ। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। वहीं इशिका ने उनकी बेचैनी को महसूस किया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मिसेस सिंघानिया। राधिका के पास कहने के लिए काफी कुछ था। वो उसे माफी मांगना चाहती थी। उसकी लापरवाही की वजह से मालविका ने बच्चों को बदल दिया था। वो उसे सारा सच बताना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक कर रह गए थे। इन सब के बीच मालविका जल्दी से दौड़कर अंदर आई और इशिका का हाथ पकड़कर उसे दबाते हुए बोली, तुम यहाँ फिर से आ गई, नक्श के पीछे आई हो ना तुम यहाँ पर। तुम्हें बता दूं कि नक्श की पत्नी और इस घर की असली बेटी आयशा है, और तुम एक नाजायज बेटी हो। तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है, तो निकल जाओ यहाँ से।
मालविका के शब्द सुनकर राधिका गुस्से से कांपने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो मालविका का गला दबा दे। उसे याद आ रहा था कि कैसे मालविका इशिका को बार बार नाजायज कहती रहती थी और आयशा का काम करने पर मजबूर करती थी। अब उसे सब समझ आ रहा था। आयशा उसकी खुद की बेटी थी और राधिका की बेटी को उसने नौकरानी बनाकर रखा था। राधिका का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इशिका को उसकी परवाह हो रही थी। उसने मालविका को इग्नोर करके फिर से पूछा, मिसेस सिंघानिया, मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। राधिका की हालत खराब होते देखकर आदर्श गुस्से में इशिका पर चिल्लाकर बोले, अब इससे पूछने का दिखावा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से ही इसकी तबीयत खराब हुई है। मालविका, इसे यहाँ से लेकर जाओ, तुम्हें कहा था इसे यहाँ मत आने देना। आदर्श का इशारा मिलते ही मालविका इशिका पर झपट पड़ी थी। चलो निकलो यहाँ से, और आगे से अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ मत आना। तुमने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है तो उसी के पास रहो। किसी से भी शादी कर लो, लेकिन इस घर ने तुम्हें पाला है तो इनके एहसान मत भूल जाना। इशिका ने कुछ नहीं कहा। सच में उस घर पर और उस घर के लोगों पर उसका कोई हक नहीं था। एक उम्मीद उसके दिल में जागी थी कि राधिका उसकी माँ है, लेकिन सच्चाई सामने आते ही उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। इशिका चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसने देखा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो राधिका थी और उसने रोते हुए धीरे से कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ इशिका। राधिका के छूने पर इशिका ने महसूस किया उसके हाथ गर्म थे और वो कांप रही थी। इशिका ने उसे सहलाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मिसेस सिंघानिया, यहीं पर हूँ। आप बताइए आपको क्या चाहिए। आदर्श जल्दी से राधिका के पास आया और उसे वहां बैठा दिया था। वो उसे सहलाते हुए भारी आवाज में बोला, राधिका मैं तुम्हारे पास हूँ, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। कुछ भी कहने से पहले राधिका ने इशिका की तरफ देखा। उसने इशिका को अपने पास बैठने का इशारा किया और फिर आदर्श से कहा, आदर्श आदर्श वो इशिका, इशिका क्या किया इशिका ने? क्या उसने फिर से तुम्हें परेशान किया? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तुम बस खुद को शांत रखो, आदर्श ने जल्दी से कहा। गुस्सा राधिका की सेहत के लिए अच्छा नहीं था। उनकी इतनी तबीयत बिगड़ रही थी क्योंकि उनका बीपी बुरी तरह हाई हो रहा था। राधिका उन्हें कुछ कह पाती उससे पहले उनकी आंखें बंद होने लगीं। अचानक उन्होंने खून की उल्टी की और वहीं पर बेहोश हो गई थीं।